एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
यीशु तुझको मैंने दिल की गहराई से पुकारा, मेरे ये गहराई से पुकारता
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूं। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम सबों को तू अपना हमारे दिलों को खोल दे और तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि हम तेरे वचनों को समझ सके पिता, और तेरे राहों में चलने के लिए हमें मदद कर। मेरे श्रोताओं को विशेष रूप से आशीष दे पिता, और मेरे संग हो तेरा पवित्र आत्मा का आशीष दे ताकि मैं तेरे सामर्थ के द्वारा तेरे वचनों को बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन ग्रहण कर, आमीन। प्यारे श्रोताओं, आज का संवाद का शीर्षक है पाप का प्रभाव। स्वर्ग से अपने निष्कासन से विचलित हुए बिना शैतान ने परमेश्वर के शासन के खिलाफ अपने विद्रोह में शामिल होने के लिए दूसरों को लुभाने की ठानी। उसका ध्यान नवरचित मानव जाति की ओर आकर्षित हुआ। वह कैसे आदम और हवा को विद्रोह की ओर ले जा सकता है? वे एक आदर्श दुनिया में रहते थे जहां उनकी सभी जरूरतें उनके सृष्टिकर्ता द्वारा प्रदान की जाती थी। कैसे वे असंतुष्ट हो सकते थे और जो उनकी खुशी का स्रोत है उस पर अविश्वास कैसे कर सकते थे? प्रथम पाप का विवरण इसका उत्तर देता है। प्रथम मानव पर अपने आक्रमण से शैतान ने उन्हें अचानक पकड़ने का फैसला किया। हवा के पास पहुंचकर जब वह भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के पास थी, शैतान ने एक सांप के रूप में परमेश्वर द्वारा पेड़ से खाने के प्रतिबंध के विषय में उससे प्रश्न किया। जब हवा ने पुष्टि की कि परमेश्वर ने कहा था कि वे इस वृक्ष का फल खाने से मर जाएंगे, शैतान ने दिव्य निषेध को चुनौती देते हुए कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे। उसने यह सुझाव देते हुए उसकी जिज्ञासा जगाई कि परमेश्वर ने उसे एक अद्भुत नए अनुभव से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर के समान होने का, उत्पत्ति 3:4-5। तुरंत परमेश्वर के वचन के विषय में संदेह जड़ पकड़ ली। हवा उस फल द्वारा प्रदान करने वाली भव्य संभावनाओं से मोहित हो गई। प्रलोभन उसके पवित्र मन में कहर ढाने लगा। परमेश्वर के वचन में विश्वास बदलकर अब शैतान के वचन में विश्वास हो गया। अचानक उसने कल्पना की, वह वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है कि वह आँखों के लिए भी लुभावना है, एवं एक वृक्ष जो किसी को बुद्धिमान बनाने के लिए चाहने योग्य है। अपनी स्थिति से असंतुष्ट हवा परमेश्वर के समान बनने के प्रलोभन में आ गई। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यह हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 3:6 में। परमेश्वर के वचन के बजाय अपनी इंद्रियों पर विश्वास करने से हवा ने परमेश्वर पर अपनी निर्भरता को समाप्त कर दिया, अपनी उच्च स्थिति से गिर गई और पाप में डूब गई। इसलिए मानव जाति का पतन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण परमेश्वर और उसके वचन में विश्वास के टूटने से जाना जाता है। यह अविश्वास अवज्ञा का कारण बना, बदले में जिसका परिणाम एक खंडित संबंध और अंततः परमेश्वर और मनुष्य के बीच अलगाव हुआ। पाप के तत्काल और दीर्घकालिक परिणाम क्या थे? उसने मनुष्य के स्वभाव को कैसे प्रभावित किया? यों पाप को खत्म करने और मानव स्वभाव को सुधारने की संभावना क्या है? पाप का पहला परिणाम मानव स्वभाव में परिवर्तन था, जिसने पारस्परिक संबंधों को प्रभावित किया। नया उत्तेजक आंखें खोलने वाला अनुभव आदम और हवा के लिए केवल शर्म की भावना लाया। उत्पत्ति 3:7। परमेश्वर के तुल्य बनने के बजाय जैसा कि शैतान ने वादा किया था, वे डर गए और छिपने का प्रयास करने लगे। उत्पत्ति 3:8-10 में हम यह पढ़ते हैं। जब परमेश्वर ने आदम और हवा से उनके पाप के बारे में सवाल किया, तो अपनी गलती मानने के बजाय उन्होंने दोष को दूसरे पर डालने की कोशिश की। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मुझे दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। उत्पत्ति 3:12। उसके शब्दों का तात्पर्य है कि हवा और अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर उसके पाप के लिए जिम्मेदार हैं, जो स्पष्ट रूप से दिखा रहा था कि कैसे उसके पाप ने उसकी पत्नी और उसके सृष्टिकर्ता के साथ उसके संबंधों को तोड़ दिया था। हवा ने बदले में सांप को दोषी ठहराया। उत्पत्ति 3:13। इसके जो गंभीर परिणाम सामने आए, वे उनके अपराध की गंभीरता को प्रकट करते हैं। परमेश्वर ने शैतान के माध्यम सांप को पतन के एक सतत अनुस्मारक के रूप में अपने पेट पर चलने का साप दिया। उत्पत्ति 3:14। स्त्री को परमेश्वर ने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। उत्पत्ति 3:16। पर यह पाप से पहले नहीं था, और क्योंकि आदम ने परमेश्वर की जगह अपनी पत्नी की बात सुनी, इसलिए उसकी व्याकुलता और परिश्रम बढ़ाने के लिए पृथ्वी शापित की गई। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। उत्पत्ति 3:17-19। अपनी व्यवस्था की अपरिवर्तनीयता की पुनः पुष्टि में और यह कि कोई भी अपराध निश्चित मृत्यु की ओर ले जाता है, परमेश्वर ने कहा, तू मिट्टी है और मिट्टी ही में फिर चला जाएगा। उत्पत्ति 3:19। उनके अदन के घर से अपराधियों को निष्कासित करके परमेश्वर ने उनका सीधा संपर्क खत्म करके उत्पत्ति 3:8 यों उन्हें जीवन के वृक्ष अनंत जीवन का स्रोत में भाग लेने से रोककर उसने इस फैसले को कार्यान्वित किया। इस प्रकार आदम और हवा मृत्यु के अधीन हो गए। उत्पत्ति 3:22। शास्त्र के अनेक अनुच्छेद विशेषकर पतन का विवरण सहित स्पष्ट करते हैं कि पाप एक नैतिक बुराई है। एक स्वतंत्र नैतिक प्राणी द्वारा परमेश्वर की प्रकट इच्छा का उल्लंघन करने के चुनाव का परिणाम है। उत्पत्ति 3:1-6 और रोमियो 1:1 18 से 22 से हम यह समझते हैं। पाप की बाइबल परिभाषाओं में शामिल है व्यवस्था का विरोध, पहला यूहन्ना 3:4, किसी के द्वारा कार्य करने में विफल होना, जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है, याकूब 4:17, एवं जो कुछ विश्वास से नहीं, रोमियो 14:23। पाप की एक व्यापक समावेशी परिभाषा है, परमेश्वर की परिचित इच्छा से हट जाना, या तो वह करने की उपेक्षा करना जिसे उसने विशेष रूप से करने की आज्ञा दी है, या तो वह करना जिसे करने के लिए उसने विशेष रूप से मना किया है। पाप किसी निष्पक्षता को नहीं जानता। मसीह कहता है, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, मत्ती 12:30। उस पर विश्वास नहीं करना पाप है, यूहन्ना 16:9। पाप अपने चरित्र में पूर्ण है, क्योंकि यह परमेश्वर एवं उसकी इच्छा के विरुद्ध है, उसके इच्छा के विरुद्ध विद्रोह है। कोई भी पाप, छोटा हो या बड़ा, फैसले का परिणाम होता है दोषी। इसलिए जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरता है, याकूब 2:10। पाप में विचारों के साथ साथ क्रियाएं भी शामिल हैं। अक्सर पाप की बात व्यवस्था तोड़ने के ठोस और दृश्यमान कार्यों के संदर्भ में की जाती है, लेकिन मसीह ने कहा कि किसी के साथ क्रोधित होना 10 आज्ञा की 6 आज्ञा, किसी की हत्या ना करना निर्गमन 20:13 का उल्लंघन होता है, और कामुक इच्छाएं तो व्यभिचार ना करना निर्गमन 20:14 आज्ञा का उल्लंघन करती है। इसलिए पाप न केवल कार्यों में अवज्ञा को शामिल करता है बल्कि विचारों और इच्छाओं को भी शामिल करता है। पाप अपराध बोध उत्पन्न करता है। बाइबल के दृष्टिकोण से अपराध बोध का तात्पर्य है कि जिसने पाप किया है वह दंड के लिए उत्तरदायी है, और क्योंकि सब पापी हैं इसलिए पूरा संसार परमेश्वर के सामने दोषी है, रोमियो 3:19। यदि ठीक से देखभाल ना किया जाए तो अपराध बोध शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक शक्तियों को तबाह कर देता है, और अंततः यदि समाधान ना किया जाए तो यह मृत्यु उत्पन्न करता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, रोमियो 6:23। अपराध बोध की विषनाशक औषधि है क्षमा, मती 6:12, जिसके परिणाम स्वरूप स्पष्ट विवेक और मन की शांति मिलती है। यह क्षमा परमेश्वर पश्चाताप करने वाले पापियों को देने के लिए उत्सुक है। पाप बोझ, अपराध बोध से भरी मनुष्य जाति को मसीह दयापूर्वक बुलाता है। वह कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह प्रतिज्ञा, मसीह का प्रतिज्ञा, हम मती 11:28 में पाते हैं। पाप का आसान, जो बाइबल कहती है, हृदय में है, जिसे हम मन के रूप में जानते हैं। पाप का आसन है मन। मन से ही जीवन के विषय निकलते हैं, नीति वचन 4:23। मसीह प्रकट करता है कि यह व्यक्ति के विचार हैं जो दूषित करते हैं, क्योंकि बुरे विचार मन से निकलते हैं, जैसे कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा निकलती है, मती 15:19। यह मन ही है जिससे संपूर्ण व्यक्ति, बुद्धि, इच्छा, स्नेह, भावनाएं एवं शरीर प्रभावित होता है, क्योंकि मन तो सब वस्तुओं से धोखा देने वाला होता है, यिर्मयाह 17:9। मनुष्य के स्वभाव को भ्रष्ट, पथभ्रष्ट एवं पूर्ण रूप से पापी भी कहा जा सकता है। कौन हमें बचा सकता है? केवल यीशु मसीह। यीशु मसीह का हम धन्यवाद दें जो हमें बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया। आइए हम आगे मानव पर पाप का प्रभाव के बारे सीखें। कुछ लोग महसूस कर सकते हैं कि वर्जित फल खाने के लिए मृत्यु की सजा बहुत सख्त थी, लेकिन हम केवल मनुष्य जाति पर आदम के पाप के प्रभाव की रोशनी में ही अपराध की गंभीरता का अनुमान लगा सकते हैं। आदम और हवा के पहले बेटे ने हत्या की, उनके वंशजों ने जल्द ही बहुविवाह में उलझकर पवित्र विवाह के बंधन का उल्लंघन किया, और ज्यादा समय नहीं लगा जब पृथ्वी दुष्टता एवं हिंसा से भर गई। उत्पत्ति 4:8-23 तथा 6:1-5 और अध्याय 11-13 में हम पाते हैं। पश्चाताप और सुधार के लिए परमेश्वर की याचनाएं अनसुनी हो गई, और उस जल प्रलय से जिसने अपश्चातापियों का विनाश किया, केवल 8 व्यक्ति ही बचाए गए। जल प्रलय के बाद कुछ अपवादों के साथ मानव जाति के इतिहास में मानव स्वभाव की पापमयता के परिणाम का दुखद विवरण है। इतिहास प्रकट करता है कि आदम के वंशज उसके पापमयी स्वभाव को साझा करते हैं। प्रार्थना में दाऊद कहता है, कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। भजन संहिता 143:2। निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। पहला राजा 8:46। और सुलेमान ने कहा, कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूँ। नीति वचन 20:9 तथा सबोपदेशक 7:20। नया नियम यह बताते हुए समान रूप से स्पष्ट है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 3:23। यों यह कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। पहला यूहन्ना 1:8। क्या पापमयता वंशागत है या प्राप्त की गई है? पौलुस ने कहा, आदम में सब मरते हैं। पहला कुरिन्थियों 15:22। एक अन्य स्थान पर उसने उल्लेख किया, जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। रोमियो 5:12। मनुष्य के हृदय का भ्रष्टाचार संपूर्ण व्यक्ति को प्रभावित करता है। इसी रोशनी में अय्यूब पुकार कर कहता है, अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। अय्यूब 14:4। दाऊद ने कहा, देख मैं अधम के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। भजन संहिता 51:5। और पौलुस ने कहा कि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो वह परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। रोमियो 8:7-8। रूपांतरण से पूर्ण, उसने कहा, विश्वासी तो और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। इफिसियों 2:3। हालांकि बच्चों के रूप में हम अनुकरण से पापपूर्ण व्यवहार प्राप्त करते हैं, उपरोक्त पद इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमें अपनी मूल पापमयता विरासत में मिली है। मानवता की विश्वव्यापी पापमयता का प्रमाण यह है कि स्वभाव से हम बुराई की ओर जाते हैं, अच्छाई की ओर नहीं। पापी व्यवहार का नाश कैसे हो सकता है? अपने जीवन से और समाज से पाप को दूर करने में लोग कितने सफल हैं? स्वयं की शक्ति से एक धर्मी जीवन प्राप्त करने का हर प्रयास व्यर्थ है, लेकिन मसीह ने हमें आश्वासन दिया है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम पाप से स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना 8:36। तुम धार्मिकता तब ही उत्पन्न कर सकते हो, उसने कहा, अगर तुम मुझ में बने रहो, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:4-5। यहाँ तक कि प्रेरित पौलुस भी अपने दम पर एक धार्मिक जीवन जीने में असफल रहा। अपने प्रयासों को याद करते हुए उसने कहा, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। पौलुस ने अंत में स्वीकार किया कि उसे विजयी होने के लिए दिव्य शक्ति की आवश्यकता थी। आत्मा में यह नया जीवन परमेश्वर का परिवर्तनशील उपहार है। दिव्य अनुग्रह से हम जो अपराधों और पापों के कारण मरे हुए हैं जीवित हो जाते हैं। इफिसियों 2:1-10। तो हम देखते हैं कि हमारा स्वभाव बुराई करने की ओर है। पौलुस के अनुभव से भी हम सीखते हैं। इसीलिए आइए हम यीशु मसीह के तरफ आए जो हमें पाप से मुक्त कर सकता है और नया जीवन दे सकता है और धर्मी बना सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। ये हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे पास आते हैं, हम तेरी उपासना करते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हम मनुष्य जाति को अपने पाप का स्वभाव से बचाने के लिए अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जगत में दिया। वही हमारा एक उपाय है पिता, जिससे हम पाप से मुक्त होकर धर्मी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हमें इसके लिए पवित्र आत्मा दे कि हम तेरे और आकर्षित हों।
हे यीशु, तुझको मैंने दिल की गहराई से
साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindiarsamc@sudadvent.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।